19वीं शताब्दी के एक महान लेखक, विचारशील तत्वज्ञानी, एक क्रांतिकारी व्यक्ति रूस में कभी था, जिसकी ढेर सारी किताबें लिखी हुई है, फ्योडर डोस्टोयेवस्की। और फ्योडर डोस्टोयेवस्की ने एक किताब में, अपने एक उपन्यास, एक नॉवेल में, अपने एक पात्र के मुख में वही सारा डाला है जो उसने अपने जीवन में खुद अनुभव किया था। रशिया में क्रांति चालू थी, जो ऑप्रेस्ड जो समाज के वो लोग जिन्हें सताया गया है उनके समर्थन में क्रांतिकारी उठ खड़े हुए थे, और ऐसे क्रांतिकारियों को कारागार में डाल दिया गया था। 27 साल का ये लेखक उसमें एक था। और फ्योडोर डोस्टोवस्की ने बाद में अपनी ही एक किताब में ये सारा वर्णन किया है। लेखक ने लिखा है, मैं जब 27 वर्ष का था, क्रांतिकारी था, और सरकार ने मुझे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। अप्रैल 1849, 8 मास तक वो और उसके साथी जेल में थे। जेल की जो कंडीशंस थी बहुत ख़राब थी। सूरज की एक किरण भी वहाँ नहीं आती थी। अंधेरी कोठरी, कारागार, सलाखे, बेड़िया, खाने पीने की बहुत खास कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा लगता था कि अब मृत्यु आई की आई। और फिर अचानक एक दिन उनको जेल से निकाला जाता है। एक गाड़ी में बिठाया जाता है और उनको एक जगह लेके जाते हैं। आंखों में पट्टी लगी हुई है और पट्टी जब खोलते हैं तब उन्हें पता चलता है अब उन्हें मृत्यु दंड की सजा दी गई है। उस तरह के उनको काले कपड़े पहना दिए जाते हैं और वो सारे 3-4 या उससे भी ज़्यादा वो सारे क्रांतिकारी उनको खड़ा कर दिया जाता है। और सैनिक बंदूक ताने हुए उनके सामने उनको मारने के लिए, बस अब लास्ट क्षण है, मृत्यु होने ही वाली है, वो मरने ही वाले हैं। उसी क्षण एक संदेशवाहक आता है और वो संदेशवाहक संदेश लेकर आता है कि सभी क्रांतिकारियों को छोड़ दिया गया है। और वो सब खुश हो जाते हैं, परंतु ये जो मेमोरी है रह जाती है। बाद में एक बहुत प्रसिद्ध किताब इसी लेखक के द्वारा लिखी हुई 1869 में, द इडियट, उसके एक पात्र के मुख में लेखक ने अपना अनुभव डाल दिया और उसने ये बात लिखी है। When I look back on my past and think how much time I wasted on nothing, how much time has been lost in futilities, errors, laziness, incapacity to live, how much little I appreciated it, how many times I sinned against my heart and soul, then my heart bleeds. Life is a gift. Life is happiness. Every minute can be an eternity of happiness. वो लिखता है, मैं जब मृत्यु के इतने समीप था, जब अब मुझे मारने ही वाले थे, उस समय जब मृत्यु के आमने सामने मैं था, तब मन में विचार आया था कि मैंने अपने जीवन में कितना समय बर्बाद कर दिया, व्यर्थ में, एरर्स में, गलतियों में, आलस्य में, अलबेलेपन में, इनकैपेसिटी टू लिव, हाउ लिटिल आई अप्रिशिएटेड इट, जीवन को मैंने कितना अप्रिशिएट करना था, कितना कम अप्रिशिएट करना, जीवन कंप्लेंट से भरा है, हाउ मेनी टाइम्स आई सिंड अगेंस्ट माई हार्ट, कितनी बार मेरे दिल ने मुझे कहा कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, फिर भी किया, कितने पाप इस 27 साल के जीवन में मैंने कर दिए, माई हार्ट ब्लीड्स, मेरा हृदय पीड़ा से भर जाता है, दुख होता है, दर्द होता है, खून बहता है। लाइफ इज अ गिफ्ट, लाइफ इज हैप्पीनेस, एवरी मिनट कैन बी एन इटर्निटी ऑफ हैप्पीनेस, हर मिनट एक सदी हो सकती थी खुशी की। What if I didn't have to die? I would turn every minute into an age. Nothing would be wasted. Every minute would be accounted for. Part 1, Chapter 5. Book, The Idiot. क्योंकि ये उसके स्व अनुभव किए हुए शब्द है। कब लिखे? 1869। इस संसार में असंख्य लोग हैं जिन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं। ये वो अनुभव था जिसमें लेखक एकदम मृत्यु के सामने खड़ा था, पर मृत्यु हुई नहीं और छूट गया। परंतु वो भय और फिर ये पश्चाताप कि जीवन कैसे व्यर्थ चला गया। हाउ मच टाइम आई वेस्टेड ऑन नथिंग, हाउ मच टाइम हैज बीन लॉस्ट इन फ्यूटिलिटीज, एरर्स, लेजीनेस। एक के बाद एक गलती, एक के बाद एक गलती। जब एक मर्यादा का उल्लंघन करते हो तो एक मर्यादा का नहीं, एक मर्यादा में सारी मर्यादाएं समाई है। जब एक गलती करते हो तो एक गलती में कई गलतियां समाई है। लास्ट एमएट का क्वेश्चन था ना। तो इस संसार में असंख्य लोग हैं जिन्होंने वो अनुभव लिखे हैं, ये एकदम मृत्यु के समीप चले गए। मृत्यु सामने थी पर हुई नहीं, एक तो ये। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने वो अनुभव लिखे हैं जिसे कहा जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बहुत बड़ी लिस्ट है। व्यक्ति सो रहा है, रात में स्वप्न देखा, मृत्यु हो गई। जब उठा तो पहले नास्तिक था, वास्तिक हो गया। पहले भगवान पर विश्वास नहीं था, अब विश्वास हो गया। जब मृत्यु को देखा तो पता चला मृत्यु के विषय में जो भय था वो अब चला गया, वो खत्म हो गया। ऐसे लोगों ने अपने ढेर सारे अनुभव लिखे हैं, ढेर सारी किताबें इस एक टॉपिक पर है जिसे कहा जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। कई लोगों ने देखा कि मेरी मृत्यु हो गई और किसी एक लाइट की दुनिया में चला गया। ये वो लोग हैं जो ना आत्मा को मानते हैं ना जो परमात्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन धर्म में है पर क्रिश्चियन धर्म को भी नहीं मानते, ना स्वर्ग को मानते हैं ना नर्क को मानते हैं, ना क्राइस्ट को मानते हैं। जन्म क्रिश्चियन धर्म में हुआ है। ऐसे लोगों ने भी अपने नियर डेथ के एक्सपीरियंसेस लिखे हैं और उस एक्सपीरियंसेस में स्वर्ग का वर्णन जो उन्होंने देखा स्वप्न में वो लिखा है। एक सर्जन ने भी अपने बहुत सारे अनुभव लिखे हैं, उसकी किताब भी है, पब्लिश भी हुई है। जो लिखता है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, मैं मरने ही वाला था, फिर अचानक मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं ऊपर हूं नीचे ऑपरेशन हो रहा है और मैं उनको बता रहा हूं कि ये करो पर वो सुन नहीं रहे, और अचानक फिर उनको टचिंग हुई और उन्होंने वो किया जो मैं उनसे कह रहा था और मैं बच गया। पर उस बीच, उस 8 घंटे ऑपरेशन के बीच मैंने किसी और जगत की भी यात्रा कर ली, स्वर्ग की यात्रा कर ली। एंजल्स मिले वहां पर, फरिश्ते मिले। तो एक तो वो कि मृत्यु के सामने है, मृत्यु होने वाली है, बेहोश नहीं है, स्वप्न नहीं है, वास्तव में जो फ्योडर डोस्टोविस्की का अनुभव जो अभी सुनाया वैसे। और उसके बाद में उनका जीवन ही बदल गया, जीवन ही परिवर्तन हो गया, जीवन ही सुधर गया। कि अगर वास्तव में मर जाते थे तो क्या होता। हाउ मेनी टाइम्स आई सिंड अगेंस्ट माई हार्ट एंड सोल दैट माई हार्ट ब्लीड्स। लाइफ इज अ गिफ्ट, लाइफ इज हैप्पीनेस, एवरी मिनट कैन बी एन इटर्निटी ऑफ हैप्पीनेस। ये फ्योडर डोस्टोव्स्की ने अपने ब्रदर मिखाइल डोस्टोव्स्की को लिखा हुआ पत्र है उसमें से, और फिर उसी में उसने एक नॉवेल लिखा था 20 साल बाद 1869 में, द इडियट। उसमें एक पात्र के मुख में ऐसा ही सीन क्रिएट किया और उसके मुख में ये सारे शब्द डाले। एक ही अनुभव और दूसरे नियर डेथ वाले अनुभव, ये भी कई बार हुए, बीकेस को भी हुए और हमने भी बहुत सारे देखे हॉस्पिटल में। कई पेशेंट्स ऐसे कि बस अब गए, और फिर वापस आ गए। कई बार हुआ ऐसा, बिल्कुल अब लगा कि मॉनिटर पर फ्लैट लाइन आ चुकी है, अब रिलेटिव को इन्फॉर्म ही करने जा रहे हैं कि गए, बाहर बैठे हैं आईसीयू के बाहर 15-20 लोग, अब उनको बताना ही है कि गए, पेशेंट आपका गया। और अचानक से रिदम वापस आ गया और फिर 2 दिन रहा वो व्यक्ति, और कोई कोई तो अभी भी रह रहे हैं। एक तो मधुबन में ही है। ऐसे कई सारे है जो गए और आ गए। बिंदु माता थी मधुबन में, डायलिसिस चलता था, वो भी गई और फिर 3 दिन और थी पूरा जाने के बाद। और कई ऐसे भी भाई बहन जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, सीपीआर हुआ और फिर रिवाइव हो गए, और बाद में सुनाते हैं कि हम बाबा के पास जाके आए, आरओएससी अचीव्ड हो गया है, पर फिर भी रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस आरओएससी कहते हैं हम लोग उसको, सर्कुलेशन, पूरा कार्डियक अरेस्ट हो गया, सीपीआर किया, ये किया, वो किया, सब कुछ किया, शॉक दिए और सबके बाद आरओएससी अचीव्ड, रिवाइव हो गया, रिदम आ गया। तब पेशेंट बताते हैं कि उनको पूछा जाता है तुमने क्या देखा, तो कहते हैं हमने ये देखा, बीकेज नहीं, बाहर वाले भी कुछ कुछ अजीबोगरीब अनुभव सुनाते हैं। एक पेशेंट था अल्कोहलिक, बहुत ही दिन रात दारू भी पीते रहता था, उसका भी अनुभव हमने, वो भी एक दो बार जाते जाते वापस आया, गया और आया। तो उसको पूछा बताओ क्या हुआ, तो बोले भगवान के पास गया, भगवान ने कहा तुम्हारा टाइम पूरा नहीं हो, जाओ नीचे। भगवान ने कहा कि तुम्हारा जाओ नीचे, तो बोले मैं वापस आ गया। तो मैंने पूछा फिर अभी नेक्स्ट बुकिंग कब है, तो बोले अभी टाइम है थोड़ा, अभी तब तक और पीना है। तो आना जाना चालू रहता है। परंतु एक अनुभव ऐसा ही है, ऐसा भी है जो केवल और केवल सृष्टि की, संपूर्ण सृष्टि में जितनी आत्मा है उसमें से एक ही आत्मा का है, वो ये है आज का संदेश। बाकी सभी संदेशों में, बाकी सभी मृत्यु जो के जो अनुभव है, एक तो मृत्यु दिखी और नहीं हुआ, जैसे बाल बाल बच गए, उधर से ट्रेन आ रही थी और एकदम बच गए, उधर से एक्सीडेंट होने ही वाला था बस बच गए, पूरा होश में थे। एक दूसरा जब हम स्वप्न में देख लिया मृत्यु को, या फिर ड्रीम में, या फिर इमेजिनेशन में, या फिर ऐसा कोई अनुभव हो गया, तो नियर डेथ एक्सपीरियंस, ऑपरेशन होते हुए फिर ऊपर से सब देख रहा है व्यक्ति क्या क्या हो रहा है मेरा नीचे। और लोगों ने, आप पढ़ सकते, ढेर सारी किताबें हैं, ढेर सारे अनुभव है, परंतु ये एकमात्र अनुभव है जहां व्यक्ति की संपूर्ण मृत्यु हो गई, बायोलॉजिकल डेथ, और उसके बाद में वो अनुभव सुना रहा है कि क्या हुआ। ऐसा वास्तव में इम्पॉसिबल है, क्योंकि मरने के बाद कैसे कौन सुनाएगा, कैसे सुनाएगा कोई, इम्पॉसिबल। ये एक ही आत्मा है जिसका ये अनुभव है जो आज हम देखेंगे। वो पहले दो तो बहुत है संसार में, किताबें लिखी है ढेर सारी इस पर, उससे पहले कि हम उस अनुभव की तरफ आए, आज का अव्यक्त संदेश नंबर 6। इसमें 3 सीन है। पहला सीन, भीड़ लगी हुई है, टिकट बट रहे हैं, किसी को टिकट मिली, किसी को नहीं मिली, किसी ने कहा टिकट हम बाद में ले लेंगे, जल्दी क्या है, जिनको मिली वो गेट में प्रवेश किया।
गेटवे टू हेवन,
गेटवे टू पैराडाइस। टिकट कौन सी थी?
टिकट टू हेवन,
हेवन की टिकट थी। और जिन्होंने टिकट ली वो गेट के अंदर गए। जिन्होंने ये कहा था बाद में लेंगे, और एक दूसरे को देखते रह गए, पश्चाताप करते रह गए। बाबा ने कहा अब वो समय है, सोचते सोचते क्या कर दोगे, भाग्य को गवा दोगे। ये सोचने का समय नहीं है। ये पहला सीन था टिकट टू हेवन, टिकट टू पैराडाइज, गेटवे टू हेवन, गेटवे टू पैराडाइज। अगर टिकट नहीं लिया है तो क्या होगा? पश्चाताप। और टिकट में भी कौन सा टिकट? फिर एसी, नॉन एसी, स्लीपर, फर्स्ट क्लास, लास्ट बट्टी में हमने देखा था घोड़ेसवार, महारथी। घोड़ेसवार जो होगा उनका ट्रेडमार्क होगा फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। और उसी मुरली में उसी के नीचे बाबा ने फिर कहा था कि एसी की टिकट, टिकट तो ली है पर कौन सी टिकट ली है, किस तरह का पुरुषार्थ कर रहा है। एसी अर्थात एयर कंडीशन, जैसे एयर होती है उसका वो कंडीशन कर सकता है, जैसे चाहो जब चाहो अपनी स्थिति को वैसा बना सको, अर्थात एसी की टिकट लेना। महारथी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान, पर जो घोड़ेसवार है वो है शक्तिवान, वो है विश्व कल्याणकारी, वो है कल्याणकारी। फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, बस यही करते रहेंगे, पूछते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे। तो सोचने वाले नहीं, समय को सफल करने वाले। यहां जितनी चेकिंग महीन होगी वहां पर महान पद की डैश होगी बुकिंग। यहां जितनी चेकिंग की गुह्यता होगी, जैसे वो वैज्ञानिक नई नई इन्वेंशंस करते हैं, जैसे वो वैज्ञानिक गुह्यता में जाते हैं। प्रश्न था ना कि भूल गए, वो साइंस वाले गुह्यता में जाते, हर चीज की गुह्यता में जाते, नए नए इन्वेंशंस करते हैं। वैसे डीपनेस में जाओ, रास्ते में नहीं, डीपनेस में, नए नए अनुभव करो, अनुभव की डीपनेस में। तो ये सबसे पहला सीन था हेवन। इतनी जितनी गुह्य चेकिंग होगी उतनी ही महान पद की बुकिंग होगी। तो यहां चेकिंग वहां बुकिंग, मर्यादाओं की फिटिंग और स्थिति की सेटिंग। सब याद आ रहा है ना? भूलना नहीं है, अभी अभी टेस्ट दिए सबने। भगवान के महावाक्यों को, एक एक लाइन को केवल कंठस्थ नहीं हृदयस्थ करना है, ताकि वो समा जाए। आज की मुरली महावाक्य लास्ट लाइन क्या है? साकार मुरली कहाँ है? हाँ टीचर किधर है? महावाक्य पढ़ाई से प्यार अर्थात मुरली से प्यार अर्थात पढ़ाने वाले से प्यार। मुरली से प्यार नहीं तो भाव से भी प्यार नहीं। हृदयस्थ, कंठस्थ नहीं, कंठ मतलब इधर, हृदय मतलब इधर। यहां से यहां, यहां जब पहुंच गया तो फिर रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं, छप गया है वो और हम एक हो गए हैं। ज्ञान हमारी धमनियों में रक्त की तरह बहे, स्पंदन। आज तो कहा है ज्ञान से भी परे जो विज्ञान। तो सबसे पहला ये सीन था। तो कौन सा टिकट हमने लिया है? एसी का टिकट, अर्थात जब चाहो जैसी चाहो अपनी स्थिति को बना सको, ऐसी प्रैक्टिस। दिन रात नए नए योग के प्रयोग करते रहने, अलग अलग जगह पर प्रयोग करने। योग का जो विषय है उसमें आत्मा अलग अलग स्टेशन से गुजरती है, कभी बीज रूप का स्टेशन, कभी रूरियान का स्टेशन, कभी फरिश्ते स्थिति का स्टेशन, अव्यक्त स्थिति का स्टेशन, अशरीरी अवस्था का, अव्यक्त स्थिति का, विदेही स्थिति का, कंबाइंड स्थिति का, साथ का, छत्र छाया का, सहारे का, वही सब कुछ का, अलग अलग स्टेशन से योग के। एक ही नहीं करते रहना, क्योंकि ये वैरायटी योग है। कभी सर्व संबंध अनुभव कर रहे, कभी कुछ अनुभव कर रहे, कभी अभ्यास कर रहे, कभी कर्म योगी है, तो कभी बैठे और केवल अशरीरीपन, केवल बीज रूप स्थिति, केवल ज्वालामुखी, कोई संकल्प नहीं, जीरो संकल्प। और कभी ऐसी अवस्था है कि जिसमें बस उसी का सहारा है, वही आधार है, उसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। कभी कुछ भी नहीं कर रहे, कभी केवल अशरीरी हो रहे, बस उसको याद भी नहीं कर रहे, केवल केवल कभी प्रकृति के साथ है। तो योग के अनुभव, योग कौन सिखाता है? योग किसी क्लास का विषय नहीं है, योग हर व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ते जाएगा, योग के नूतन अनुभव होंगे। और योग अर्थात, योग का किसी कमरे से संबंध नहीं है, योग का किसी स्थान से संबंध नहीं है, योग का ट्रांसलेट से कोई संबंध नहीं है, किसी चित्र से, किसी ब्रह्मा से, कोई शिव बाबा गोल गोल वहां पर, कोई लाइट, कोई गीत, कोई सॉफ्ट म्यूजिक, ये सब से क्या लेना देना है? ये सब तो ABC, KG1 KG2 आलंबन है, धीरे धीरे, परंतु हाँ आवश्यक है, क्योंकि संसार कलियुगी वातावरण है, विकारी लोग है, सब वाइब्रेशंस वैसे है। तो कम से कम पहले उस वाइब्रेशन से इस वाइब्रेशंस में तो आ जाए, ये भी तो उससे हम जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहला, अगर हेवन का टिकट चाहिए तो अपने आप को तैयार करना है, ये नहीं बाद में ले लेना। एग्जाम दी, एग्जाम में फर्स्ट आ गए, और फर्स्ट आने के बाद टीचर ने कहा स्कूल में कि जो भी टॉपर्स है उनको सबको बख्शीश मिलेगा, शाम को आ जाना। तो एक बच्चा गया ही नहीं, पर वो टॉपर है। उसने कहा आज क्या लेना है, आज लो क्या कल ले लेंगे, बख्शीश ही लेना है ना, ट्रॉफी लेना है ना, आज क्या ले, कल ले लेंगे। दूसरे दिन पहुंचा, टीचर ने कहा बख्शीश ये था कि सर्कस की टिकट थी, वो भी एक ही दिन की, वो भी शाम की, कल की, वो गई अब फ्री टिकट। तो बाबा ने कहा सोचते सोचते भाग्य को तो नहीं गवा देते हो। तो ये वो लोग, दूसरा सीन, ये सीन मर्ज हो गया, सूक्ष्म वतन का दूसरा सीन। दूसरे सीन में नदी बह रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं नदी कहाँ है, लोग वहां है, वो कह रहे हैं वहां है जाओ, वो जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पानी जमा भी कर रहे हैं। और जो वहां बैठे हैं, जो वहां रहने वाले हैं, वो बता रहे कि वहां है, और किसी किसी को तो शायद पता भी नहीं होगा कि नदी कहाँ है, रहते वहीं है, पर पूछो तो पता नहीं कहाँ है। और फिर अचानक नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, नदी चली गई, फिर जो रह गए वो पश्चाताप करने लगे, फिर वो मांगने लगे, एक बूंद दे दो, एक बूंद दे दो, एक बूंद दे दो, एक बूंद दे दो, तड़प रहे। बाबा ने कहा ये है ज्ञान नदी, जो नहा रहे हैं, जो भर रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं वो पानी, वो लोग हैं जो बाहर से आ रहे, और जो वही है वो आबू निवासी है। इसी भूमि पर भगवान आया है, पर इनको पता ही नहीं, इधर ही जन्म हुआ है। दादा पर दादा, हमारे ओपीडी में ऐसे कैसे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने आपके ब्रह्मा बाबा को देखा, वो तो हमारे पास से ही किराना लेके जाया करते थे, यहाँ के बहुत पुराने पुराने लोग हैं आबू है, जिनके दादा परदादा यही है। कुछ तो ऐसे हैं जो पहले उधर सिंध हैदराबाद में थे, फिर वो इधर आ गए 1940s-50s में, पर उन्होंने ये सब देखा है, इस यज्ञ की शुरुआत से सब कुछ देखा है। यहाँ प्रेस करने वाले वो कहते वो आपके बाबा का, हमारे जो पिताजी थे वो कपड़े प्रेस भी करते थे, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस के लोग सबने देखा है, मम्मा को देखा है। यहाँ पे नर्स एक सिस्टर थी क्रिश्चियन, वो कहती थी आपकी मम्मा शी वॉज माई फ्रेंड, वो खुद 90 वर्ष की थी क्रिश्चियन नन, यहाँ के जो चर्च है वहां की, टोली खाई है, सब कुछ किया है, बाबा उनके दोस्त थे, सब कुछ देखा है। अभी भी आते ओपड़ी में तो ये हमने इनको बहुत देखा है ऐसा कहते। हम सबको जानते हैं, आपकी जितनी दादियां हैं ना उन सब दादियों को जानते हैं, सबसे मिले हैं, हम तो तब से आए हुए हैं, हमको पता है जब ये सब लोग यहाँ आए थे, बच्चे थे छोटे छोटे, तब से ये लोग हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा कि नदी बह रही है, पर नदी ने रास्ता पलट दिया, और फिर यहाँ वाले जो है उनको ही नहीं पता ये कौन सी नदी थी। बाबा ने कहा ये ज्ञान नदी है, इन ज्ञान नदी में नहाओ, अब टाइम वेस्ट मत करो, अब समय नहीं गवाओ, ये अमूल्य ज्ञान नदी है, अमूल्य समय है, डोंट वेस्ट द टाइम। और ऐसा झटके वाला अनुभव थोड़ा होना चाहिए, जैसे ये फ्योडर डोस्टोयेवस्की का बताया, व्हेन आई लुक बैक ऑन माय पास्ट एंड थिंक हाउ मच टाइम आई वेस्टेड ऑन नथिंग, हाउ मच टाइम हैज बीन लॉस्ट इन फ्यूटिलिटीज एरर्स लेजीनेस, ऐसा एक झटके वाला अनुभव चाहिए, तब जागृति आती है कि हम क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना व्यर्थ में टाइम चला गया जीवन का। किसी व्यक्ति से कोई संबंध बना दिया, उस संबंध में कितना टाइम चला गया, मिला क्या, जीरो, कुछ भी नहीं प्राप्ति हुई, ना उसे ना हमें। इसलिए जो संबंध बने हैं वो ठीक है, अभी नए मत बनाना, राखी आ रही है, तुम मुझे भाई जैसे लगते हो, तुमको देखती हो तो मेरे छोटे भाई की याद आती है, नए संबंध बनाए, ना स्त्री देखो ना पुरुष देखो, क्योंकि स्त्री और पुरुष के संबंध में भी डैश एक्सीडेंट, बहन और भाई इसकी भी दाल नहीं गलती। जब दृष्टि वृत्ति चंचल हो तो अपने आप को क्या समझो, इष्टा का कीड़ा समझो, अपने आप को क्या समझो, जमादार अपने आप को क्या समझो, रव रव नरकवासी। हृदयस्थ करना है, तुम एक एक इंजन हो निखिलेश भाई, तुम्हारे पीछे ग्रहचारी बैठी है, बाप पड़ा हुआ है, माया पड़ी हुई है, ऑप्शन 4 विश्व की आत्माएं, क्या ऑप्शन की जरूरत नहीं, पर ऑप्शन भी याद हो जाए, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्टर्स एंड एनर्जी ड्रेनर्स की लिस्ट बनानी है। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट होता है, और वर्तमान समय सबसे ज्यादा किस में लगे हुए हैं लोग, शॉर्ट्स और रील्स, घुसते हैं तो निकलते नहीं, क्योंकि अट्रैक्टिव चीज़ है, नई नई चीज़ है। और हमारे मन का स्वभाव कंसंट्रेशन का स्वभाव नहीं है, चंचलता का स्वभाव ज़्यादा है। ये चंचलता को का पोषण करता है ये, क्योंकि मुरली अर्थात 6 पेज की मुरली पढ़ना कितनी एकाग्रता चाहिए। एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट वहाँ आ रहा है, एक पॉइंट वहाँ, सारे पॉइंट्स को पढ़ना, केवल पढ़ना नहीं, उसको फिर जोड़ना, उसको याद रखना, उसको समझना, उसकी गहराई में जाना, उसको जीवन में लाना, अप्लाई करना। एक पादरी जा रहा है, उसके साथ एक सोप मैन्युफैक्चर का मालिक है, वो जा रहा है। वो सोप मैन्युफैक्चर का मालिक कहता है, ये क्या है, कौन भगवान, क्या भगवान, ये पढ़ने बिढ़ने से बाइबल क्रिश्चियन स्टोरी है, ये सब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, फिर भी तो लोग इतने पाप कर्म करते हैं, ये सब करते हैं, ये पढ़े भी तो क्या फायदा, अच्छी बात है, पाप कम होने वाला है क्या इससे। वो जाते जाते, वो पादरी कुछ नहीं बोलता है, चुप। जाते जाते उनको एक बच्चा दिखता है, पूरा गंदगी में कीचड़ बीचड़ लगा हुआ है। तो पादरी कहता है, ये साबुन जो तुम लोग बनाते हो उसका क्या फायदा है, देखो गंदगी में घूम रहा है बच्चा। वो कहता है, अरे गंदगी में तो घूमेगा ना, ही शुड अप्लाई इट। तो कहते, वही तो मैं कह रहा हूं, यू शुड अप्लाई द नॉलेज, दिस इज अप्लाइड नॉलेज। ये नॉलेज सुनाने के लिए नहीं है, केवल सुनने के लिए नहीं है, ये नॉलेज लिखने के लिए नहीं है, ये नॉलेज में आहा हा बहुत अच्छा केवल रमन करने के लिए नहीं, बुद्धि विलास के लिए नहीं है, ये नॉलेज को जीवन में लाना है, नॉलेज और जीवन एक बन जाए। लोग जब ये भट्टियां चालू की थी फरवरी में, तब एक प्रश्न आया था कि धारणा कहाँ से करेंगे, धारणा कहाँ से करेंगे, ये टेक्निक 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 क्या लगा रखा है, ये मुरली याद रखो, वो याद रखो। तब हमने कहा था, धारणा अपने आप होगी, और वो हुई है, केवल ज्ञान को पकड़ लो। अब दूसरा प्रश्न और है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, योग कब करेंगे, ज्ञान जब बुद्धि में संपूर्ण रीति स्पष्ट हो जाएगा, निरंतर दिन रात सतत बहते रहेगा, टपकता रहेगा, ज्ञान की बुलबुल टिकलू टिकलू करती रहेगी दिन रात, कि हम और ज्ञान एक हो जाए, तब परिणाम योग स्वतः होगा। योग करने की जरूरत नहीं है, और जैसे कहा, केवल बैठकर ही योग नहीं होता है, हमारा तो योगी जीवन है। कल की मुरली संडे की क्या कहा, योग का प्रभाव जीवन में दिखे, युक्त युक्त योग युक्त बोल और चलन, चलन में नहीं दिख रहा है और योग बहुत अच्छा कर लिया, आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट, बहुत 1 घंटा शरीरपन का अनुभव हो गया, बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति ज्वालामुखी योग सब हो गया, कर्म योग में गए और झगड़े चालू, 2 बजे उठने योग जो करते हैं, ताकत ज्यादा है, घायल भी ज्यादा करते हैं, झगड़े भी ज्यादा करते हैं, कहाँ चला जाता है पता नहीं, वो वहीं तक सीमित है। योग और ज्ञान अलग अलग ना हो, एक हो जाए, अमृत वेला दिनचर्या अलग अलग नहीं, एक हो जाए, 4 सब्जेक्ट है ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट है, कई बार कहा है, ज्ञान ही योग है, योग ही ज्ञान है, ज्ञान ही धारणा है, धारणा ही ज्ञान है, धारणा ही सेवा है, सेवा ही धारणा है, ज्ञान इक्वल टू योग इक्वल टू जी इक्वल टू वाई इक्वल टू डी इक्वल टू एस जी वाई डी एस एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। तो ये सेकंड सीन था। तीसरा सीन था महामंत्र की गिफ्ट, तीसरा सीन था महामंत्र की गिफ्ट। तो महामंत्र की गिफ्ट में बाबा ने 2 गिफ्ट दी है सौगात के रूप में, वो कौन से सौगात है, पहला तो एक बाप को याद करो, दूसरा योगी बनो, पवित्र बनो। तो ये यहां पर पूरा हुआ। अब दूसरा जो है वो लिखा नहीं, उसमें 10 सीन्स है, सीन्स, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सबसे पहला यहां पे लेटर्स का एक माउंटेन, वतन में क्या आया है, लेटर्स ही लेटर आए हैं, इतने सारे लेटर्स आए कि सबका क्या बन गया है, एक पहाड़ बन गया है। फिर वो सारे सीन्स है इसमें, ईशू दादी, मम्मा, ब्रह्मा बाबा, ये सब इमर्ज हुए, क्या लेटर्स है। बाबा ने कहा इन सब का, दादी कहती है तुम आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे इतने लेटर्स का। बाबा ने कहा एक सेकंड में कर दूंगा। शिव बाबा तो साक्षी होकर देख रहा है, डेड साइलेंस है, और बाबा ने यहाँ पर एक लेटर है, शिव बाबा का, बाप दादा का लेटर। क्या लेटर है वो, क्या लेटर है, बाप दादा का खत, ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्न बच्चों प्रति समाचार यह है कि, यह पहला लेटर है ब्रह्मा बाबा का। क्या लेटर में लिख रहे, सभी बच्चों के उलाने के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। रेस्पॉन्ड में बाप दादा बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई है, सभी पार्ट बजा रही है। इस संसार में कोई भी बंधन से छूटा हुआ नहीं है। उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पार्ट बजा रहा हूं। बहुत सारे उलाने वाले खत लिखे हैं बाबा को, क्यों चले गए, बता के क्यों नहीं गए, छुट्टी क्यों नहीं ली, वगैरह वगैरह। हाँ, हमें क्यों नहीं साथ में लेके गया, वादा तो किया था साथ में जाएंगे, साथ में अभी आगे क्या होगा, यज्ञ का क्या होगा, और ये सारे प्रश्नों के उत्तर किस मुरली में है, 69 21 जनवरी। ये सारे ढेर सारे डायरेक्शन से यज्ञ कैसे चलेगा, इंचार्ज कौन होगा, मुरली किसे कहा जाएगा, ध्यान का क्या पार्ट रहेगा, इंचार्ज कौन रहेगा, यज्ञ कौन देखेगा, दादी दीदी चक्कर लगाएंगे, ध्यान दीदार का क्या होगा, मुरली जादू किस में है, इसमें है या उसमें है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। वो कितनी पॉइंट्स है, 15-20 पॉइंट्स है, वो कई बार रिवाइज कर चुके हैं। सभी बच्चों को दिल व जान सिख व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत 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 स्वीकारो। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों की स्थिति रखनी है। तो सेकंड सीन, पहला सीन कौन सा था, खत है बहुत सारे। दूसरे सीन में बाप दादा का ये खत, बाप दादा ने खत। फिर तीसरा सीन, बाबा ने सबको दृष्टि दी, और इस दृष्टि में, एक सेकंड की दृष्टि में बाबा ने कहा बहुत कुछ समाया हुआ है। भगवान की एक सेकंड की दृष्टि, उसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। तो कल भी अभ्यास बताया था, दृष्टि लेना, भगवान की दृष्टि, उसमें क्या क्या समाया हुआ है, क्या क्या फील हो रहा है, वो महसूस करना, उन आंखों में क्या क्या है, सारी दुनिया है उसमें, शक्ति आ रही है, पवित्रता आ रही है, प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं उन आंखों से, सब कुछ। तो ये था तीसरा सीन। चौथा सीन, सीन फोर, बाबा को पूछा कि जब आप जा रहे थे 18 जनवरी का दिन, टाइम 8:45 के आसपास, क्या हुआ एग्जैक्ट, व्हाट इज द थिंग, आपका अनुभव क्या रहा। तो अभी तक हमने कहा ये एकमात्र अनुभव है संपूर्ण सृष्टि में, कितनी करोड़, 700 करोड़ अरब खरब जो आत्माएं हैं उनमें से ये एक ही अनुभव है जो डेथ के बाद का अनुभव है, क्योंकि ये अनुभव दूसरा कैसे कोई बता सकता है। बायोलॉजिकल डेथ हो गई है, उसके बाद का ये अनुभव। तो बाबा ने यहां पर बताया, अंतिम समय मुझे क्या हो रहा था। तो बाबा ने कहा जैसे कोई अखाड़ा है और जो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं, रेसलिंग, तो एक पहलवान को समझ लो कर्म भोग और दूसरा पहलवान कर्म योग, दोनों की लड़ाई चालू थी, कभी इसका फोर्स ज्यादा था कभी इसका फोर्स ज्यादा था। कर्म भोग अर्थात शरीर का दर्द या शरीर की पीड़ा, शरीर के हिसाब किताब, ये दोनों की लड़ाई चालू थी। और मैं साक्षी होकर देख रहा था, कभी इसका फोर्स ज्यादा, कभी इसका फोर्स ज्यादा, और लास्ट में कर्म योग का फोर्स ज्यादा हो गया, दर्द कम हो गया, दर्द खत्म हो गया, कर्म भोग खत्म हो गया और इसकी विजय हो गई। ये मैंने देखा, यह है मृत्यु के समय का अनुभव, कर्मातीत मृत्यु के समय का अनुभव। शब्द जोड़ा है उसमें कर्मातीत मृत्यु का अनुभव, डेथ का एक्सपीरियंस। कि क्या अनुभव हुआ मुझे, कि ये दो फोर्स थे, एक तरफ कर्म भोग खींच रहा था, एक तरफ कर्म योग खींच रहा था, और विजय किसकी हो गई, फिर कर्म योग की विजय हो गई। दर्द अचानक चला गया, ये एक। फिर उसके बाद में एक दूसरा सीन, पांचवा सीन नंबर 5। इसमें बाबा ने कहा तीन बातें, और ये तीन बातें बहुत काम की है, क्योंकि ये और कहीं नहीं मिलेगी, ना किसी मुरली में आया है बाद में, और ना ही संसार की जो आत्मा है उन्होंने कभी ये ऐसा सुनाया, ना कोई सुना पाएगा। और ये अभ्यास हमें रोज करना है, वो कब करना है वो देखेंगे। तो कौन सी तीन बातें, बाबा ने कहा शरीर छूट रहा है बाबा का, सबसे पहली बात, ऊपर बाबा से बातें चल रही है कि बाबा मुझे ऊपर बुला रहा है, पहली पॉइंट, बाबा मुझे ऊपर बुला रहा है। दूसरी पॉइंट, ये जो आज संसार है, इस संसार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, तो यहां पर क्या है, शुद्ध मोह की अवस्था है, मोह नहीं है, शुद्ध मोह है, और कोई विचार नहीं है, कोई संकल्प नहीं है खास, स्नेह है बस। तीसरा, आत्मा को देखना है, मैं देख रहा था कि आत्मा शरीर के एक एक अंग को छोड़ रही थी, भाभा का सन्नाटा और डेड साइलेंस की अवस्था, क्या था, भाभा का सन्नाटा और डेड साइलेंस की अवस्था, शरीर से आत्मा निकल रही थी, एक एक अंग को छोड़ रही थी और आत्मा शरीर से बाहर निकल रही थी, ये मेरा अनुभव है। दादी ने पूछा आपने क्या अनुभव किया, तो बाबा ने ये तीन बताए। तो अभी हमको करना क्या है, जब भी सोने जाओगे, चाहे दोपहर में सोते हो, रात को सोते हो, सुबह सोते हो, ये तीन चीजों का अनुभव करना है, कि मैं बेड पर लेटा हुआ हूं, ये है बेड, और ये हूं मैं। सबसे पहली पॉइंट, सोचो, ये पहले तो ये तो सोच लेना है, कर्मातीत मृत्यु का अनुभव करना है, तो सबसे पहले तो बाबा बुला रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या, कि बाबा मुझे बुला रहा है, अब पता नहीं वापस उठूंगा कि नहीं, तो बेड पर जाओ तो सोचो जीवन पूरा हुआ तो यहां मैं जा रहा हूं। फिर दूसरा, ये संसार, संसार की आत्मा है, जैसे ब्रह्मा के लिए बाबा ने कहा कोई खास विचार नहीं था कि छुट्टी लेनी है या कुछ करना है, बस एक शुद्ध मोह, तो ये संसार के भी कोई विचार नहीं है, किसी से कोई मोह नहीं है, किसी से कोई आसक्ति नहीं है, लगाव खत्म, मेरा संसार से लगाव खत्म हो चुका है, मैं यहाँ बेड पर हूं। और तीसरा, अब देखना आत्मा एक एक अंग को छोड़ रही है, हाथ, बॉडी स्कैनिंग, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पैर को छोड़ा, इसको छोड़ा, अंग उंग, एक 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 ढीला ढीला छोड़ते जाओ, पूरा शरीर देखो और एक एक चीज छोड़ते, इसमें से पावर गई, इसमें से पावर गई, ये ढीला हो गया, ये ढीला पड़ गया, ये ढीला पड़ गया, पेट ढीला पड़ गया, आंखें, नाक, कान, फिर हिलना विलना सब बंद एकदम ऐसे, और मैं आत्मा जा रही हूं। ये अभ्यास करना है, कब करेंगे, रोज, ये है प्रैक्टिस, ये है कर्मातीत मृत्यु, तुम जीते जी मर्जी वा जन्म है तुम्हारा, लिविंग डेथ, डाइंग अलाइव, तो जब भी लेट जाओ ये अभ्यास करना, ये आज का है होमवर्क, लेटो सोचो ऊपर से बाबा बुला रहा है, ये एक ही काफी है और मैं गया, और उसको और ड्रामेटाइज करने के लिए अगर कोई सफेद चादर हो उसको ऊपर डाल दो, अगर मोबाइल है तो उसमें गीत भी चला देना, अब घर जाना है, और गुरुवार का यदि दिन हो तो भोग में हलवा भी बना देना, ताकि फुल प्रिपरेशन कि मैं तो गया। तो ये अभ्यास करना है मृत्यु का अनुभव हो तो जो वास्तव मृत्यु होगी तब कोई डर नहीं होगा, ये तो मृत्यु का भय रहता है। सोचो अभी मर गया, अभी मर गया, अभी मृत्यु का अनुभव हुआ, एक तो बाबा ने बुला लिया, दूसरी संसार से कनेक्शन खत्म कट कट, और तीसरा आत्मा एक एक अंग को छोड़ना, तो एक एक अंग को देखना है, अंगूठे से चालू करो, अंगूठा इधर से गया, ये उंगली से गई, एक एक उंगली से आत्मा शरीर छोड़ रही है, पैर से एक भी अंग छूटने ना पाए, एक भी अंग छूटने ना पाए, जो बॉडी स्कैनिंग में हम वही तो कहते हैं, एक भी अंग छूटने ना पाए, एक एक अंग से आत्मा अपना शक्ति छोड़ती हुई निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, और फिर निकल गई, और ये करते करते कब नींद आ जाए वो भी नहीं पता चली, और जब उठो दूसरे दिन सोचो अभी अभी परम धाम से अवतरित होकर इस शरीर में आया हूं, नया जन्म हुआ है मेरा, वो तो कौन था पता नहीं, मृत्यु हो गई उसकी, नया जन्म हुआ है, नए सिरे से आज सब कुछ नया करूंगा, अभी तो जन्म लिया है। ये भी था ना पिछले भट्टी में, रात को सो जाओ तो ब्रह्म से ब्राह्मण, तो ब्रह्म से ब्राह्मण का जन्म हुआ, महारथियों का नींद का समय भी योग में गिना जाता है, मम्मा बाबा का उदाहरण भी दिया था उसमें, तो कहीं जाके चार्ट बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। कहाँ थे हम बच गए तो ये तीन, तो ये एक सीन था, ये सीन भी पूरा हुआ, तो बाबा ने कहा ये मेरा अनुभव था। अगला, दादी ने और एक प्रश्न पूछा, कौन सा प्रश्न, कौन सा प्रश्न, अगर हम लोग वहां होते तो हम तुमको रोक देते, तो बाबा ने क्या कहा, ये ड्रामा कैसे चलता फिर। ये भी सीन पूरा हुआ। अगला प्रश्न, बाबा दादी ने कहा ये जैसे आर्टिफिशियल लग रहा था, रियल नहीं लग रहा था ये सारा, बाबा ने कहा ये तुम्हारा क्या है, स्नेह का तार जुड़ा हुआ है ना, मीठी तार जुड़ी हुई है, इसलिए। ये भी सीन पूरा हुआ। फिर और एक सीन इमर्ज हुआ, बाबा को, बाबा ने कहा कि मैं कहाँ पहुँच गया, साकार वतन में, और इधर जैसे मकान तैयार हो रहा है ये दिख रहा है, मैं नीचे हूँ और ऊपर मकान तैयार हो रहा है, बिल्डिंग इज गेटिंग रेडी, मैं उस मकान में, मुझे जाना है। ये सीन भी पूरा हुआ। अगला सीन कि बाबा ने कहा मैं अभी भी चक्कर लगाता हूँ, क्या तुमको महसूस होता है, जो कल भी कहा था ना, विशेष खास बच्चों को खास समय पर बाबा याद करते हैं, खास बच्चों को, तो तुमको अनुभव होता है कि मैं आता हूँ, तुमको अनुभव होता है कि मैं आता हूँ, मैं मदद कर देता हूँ, भरते हुए किसी ने ना देखा पर झोली भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, अदृश्य मदद, कैसी मदद, इनकॉग्निटो हेल्प, अचानक से मदद आ गई, कहाँ से आई, कैसे आई पता नहीं, पर अपने आप आ गई, अपने आप कार्य बन गए, जो हम सोच रहे थे असंभव है, ऐसी असंभव बातें संभव हो गई लास्ट मोमेंट में, और ये दिखाई देने लगा कि उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। कई बार हम सेवाएं करते असफल होते, प्रोग्राम्स इतने सक्सेसफुल नहीं होते, एक अनुभव है किसी सेंटर का कि वहां पर कोई एक मेगा प्रोग्राम रखा गया और कुछ वीआईपीस को बुलाए गए स्टेज पर, 10-12 बैठे थे, पर कोई नहीं आया, इतनी बारिश और इतना मौसम खराब, तो सबको लगा रे क्या है इतना सब खर्चा, ये वो हुआ, पर कुछ हुआ नहीं। पर ये जो स्टेज पे थे ना, उसमें से दो लोग ज्ञान में आ गए। ये सूक्ष्म राज है इस सेवाओं में, सेवाओं के असफलताओं में तो बहुत ही गहरा राज है। सेवा सफल हुई तो उसमें कोई राज नहीं है, राज किस में है? असफलता में। अभी ये इनके लिए था वो। तो कहाँ क्या सेवा हो रही है हमें पता नहीं चल रहा, इतने सूक्ष्म है सब कुछ। और ये भी ऐसे वैसे नहीं निकले, एकदम पक्के हो गए। और लोगों को चिंता होगी, देखो इतने बड़े बड़े लोग आए और कोई नहीं। इनको चिंता थी, लोगों को, हमको चिंता थी कि सामने पब्लिक हो, पब्लिक कम, हमारी सेवा हम किससे जोड़ते हैं? अमाउंट से, कितने लोग आए, संख्या कितनी है, 1,000 आए, 2 लाख लाए, 1 लाख आए, 3 लाख, क्या है क्वांटिटी? पर भगवान की दृष्टि ये इन दोनों के ऊपर थी। ये निकले, आने वाला कोई नहीं आया। तो ये बहुत सूक्ष्म है सारा। तो बाबा ने कहा मैं साथ हूं। और लास्ट पॉइंट, वो एक चक्र, ऐसा चक्कर के अंदर चक्कर, लेबिरिंथ, चक्कर के अंदर चक्र, चक्र के अंदर चक्र देखा दादी ने, और सबके बीच में ब्रह्मा दिखा, और फिर ब्रह्मा को एक दो तीन रास्ते निकल निकलने वाले, फिर ब्रह्मा को एकदम सेंटर पॉइंट पर देखा, जीरो पॉइंट पर, यहाँ ये ब्रह्मा है अव्यक्त पर। और फिर ब्रह्मा ने क्या कहा कि मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हूं, मैं भी छूट नहीं सकता, मीठा बंधन है, कोई नहीं, शिव बाबा भी नहीं छूट सकता, तो मैं, मेरी क्या बिसात, कोई नहीं छूट सकता इसमें से, सब बंधे हो गए। तो ऐसी ये 10 सीन्स है इस मुरली, इस संदेश की। तो आज हमने ये 2 संदेश दिए और 6 संदेश बाकी है, कल 3 संदेश और परसों 3 संदेश, इसलिए पहले से ही सबको पढ़ के आना है। एग्जाम इसमें कोई एग्जाम नहीं है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, अगली जो होगा उसमें एग्जाम होगा। तो आज का होमवर्क नंबर 1, टाइम वेस्टर्स और एनर्जी ड्रेनर्स की लिस्ट बनानी है, कि मेरे टाइम वेस्टर्स कौन है, कौन मेरा टाइम वेस्ट करता है, और एनर्जी मेरी कहाँ व्यर्थ चली जाती है। एनर्जी ड्रेनर, टाइम वेस्टर्स की लिस्ट, अपनी व्यक्तिगत, अपनी पर्सनल, होमवर्क 1। होमवर्क नंबर 2, ये वाला अभ्यास पावरफुल, मृत्यु वाला, जब भी लेट हो तो बोल के रखना अपने सेंटर वालों को, घर वालों को, भरोसा नहीं है कुछ दिया बाजू में दिया भी जला दो कि हम तो गए। तो गए कि गए, ये दूसरा। तीसरा, पहला होमवर्क टाइम वेस्टर्स एनर्जी ड्रेनर्स, दूसरा होमवर्क मृत्यु का अभ्यास, तीसरा होमवर्क कर्म भोग और कर्म योग की जो लड़ाई है। अगर कोई बीमार है और बहुत दर्द होता है तो यह अनुभव करना है कि जैसे ब्रह्मा ने अनुभव किया लास्ट में, इसका भी फुल फोर्स, उसका भी फुल फोर्स, लड़ाई चल रही है, मल्ल युद्ध चल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, साक्षी होकर देख रहे हैं उसको, और देखना है कर्म योग जीत गया, वो पीड़ा खत्म हो गई, इतना दर्द, इतना दर्द घुटनों में, इतना दर्द, देखते रहो देखते रहो, अनित्य है अनित्य है अनित्य है, वो खत्म हो जाएगा, हम जीत गए। जो भी दर्द है, जो भी बीमारी है, हमेशा के लिए नहीं है, आई और गई, आई और गई, अनुभव करना है ये। तो ये वाला एक एक्सपीरियंस करना है, एक लड़ाई, इन दोनों की लड़ाई में कौन जीत रहा है उसका। और फिर अगला और क्या है आज, बस बस ये 3 ही, बहुत ज्यादा होमवर्क दे देते हैं तो ऊपर ऊपर चला जाता है, तो बस केवल 3। हाँ, ये दृष्टि में क्या क्या, वो पहले भी बता चुके हैं, दृष्टि में क्या क्या समाया हुआ है, और बाबा को अनुभव करना कि इर्द गिर्द है, आसपास है, महसूस करना उसको। बाबा ने कहा मैं हूं, महसूस होता है, मैं मदद करता हूं, बाबा की सूक्ष्म मदद को ढूंढना है। मधुबन आ जाना ही उसकी मदद नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ की इच्छा जागृत होना यह भी तो मदद ही है। तो ऐसे ही अव्यक्त, एक एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल तीन संदेश रहेंगे, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। रात को पढ़ लेना, अभी दिन भर नहीं पढ़ना, रात को एक बार, यहाँ आने से पहले एक बार पढ़ के हो जाना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।
जी।